क्या था इब्राहिम का तरीका? पहले तो हल्की सी बात की, अब उसकी तफसीलात। इस कॉल लहू रब्बु हु अस्लिम, आयत 131। जब इसके रब ने इसको कहा कि मेरे सामने झुक जाओ, ठीक है, इस कॉल लहू, यहां बड़ी खूबसूरत लफ्जी हुसन है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, आप ना उलझें, तो देखिए यहां ये लफ्ज क्या है, इस कॉल लहू, हु आया ना, और हु से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये तो नहीं आया ना कि इस काल अली इब्राहिम रब्बुहु अस्लिम, इब्राहिम का लफ्ज नहीं आया ना, उसकी जगह पे हु की जमीर आ गई, ठीक है, कि जब उसको कहा उसके रब ने कि अस्लिम, मुसलमान हो जा, फरमा बरदार हो जा, बात मान ले, काला, तो कहा उन्होंने, किसने कहा, इब्राहिम ने, अस्लम तू, मैं मुसलमान हो गया, ली रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए। यहाँ ये क्यों नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब मैंने जो बात उठाई है उस पर गौर कीजिएगा, लहू जब आया था ना, जमीर थी ना, तो आगे भी जमीर ही आनी चाहिए थी, यानी इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तू, लहू, दैट्स इट, बात खत्म। उसको कहा मुसलमान हो जाओ, उसने कहा मैं हो गया उसके लिए। अल्लाह सुबहाना तला के लिए लफ्ज हु नहीं आया, बल्कि रब्बिल आलमीन आया। इब्राहिम ने अपना मुकाम बयान कर दिया कि मेरा रब मुझे जिस तरह से भी चाहेगा, मैं उसके आगे झुकने को तैयार हूँ, मेरा रब रब्बुल आलमीन है। इसकी वजह क्या है? तीन वजूहात नोट करें। सबसे पहली तो अदब, अदब के लिए अल्लाह ताला के लिए रब्बुल आलमीन का लफ्ज अदब के साथ इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की शान का हक बयान किया। फिर दूसरा, इससे एक मफहूम निकलता है कि अगर मैंने रब्बुल आलमीन की इताअत इख्तियार की है, तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। बात वाज़े, यानी अपने छोटे होने का एहसास दिलाया जा रहा है कि मैंने अगर रब की बात मान ली है, तो कोई मैंने एहसान किया, मैं तो हूं इतना छोटा, मेरा रब इतना बड़ा, इसी को मान लूंगा, इसके सिवा कोई बात ही नहीं है। और तीसरी बात क्या पता चलती है कि जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम बताते हैं कि वो रब्बुल आलमीन सारे जहान वालों को पालने वाला है, तो मुझ पे फर्ज है कि मैं उसकी बात मानूं। यानी पहली बात क्या है, अदब और अल्लाह की सना और हम बयान करने का मुकाम है। दूसरा बता रहे हैं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं रब्बुल आलमीन के आगे झुका हूं, किसी छोटी हस्ती के आगे नहीं झुका। और तीसरा ये कि इसके आगे झुकना मेरे ऊपर फर्ज है। अब आप बताइए कि एक लफ्ज के अंदर से मानी निकलते हैं। ये है कुरान, ये समंदर है जिसको आप पीने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ खोल के बयान कर दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी बात को सुनकर छू चा हाँ हूँ मैं नहीं पढ़ गए। हम होते तो क्या करते, अच्छा सोचते हैं, लेट सी वट विल हैपन, एफ 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 एफ, बट यस आई वॉन्ट टू डू इट, बट हमारा बट इतना बड़ा हो जाता है कि हम काम ही नहीं कर पाते। और एफ के नाम पे सवालात का एक इतना लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को नेकियों से महरूम कर देते हैं। असल बंदे का मुकाम भी यही है कि इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन। आप दुनिया में अपने लिए क्या पसंद करते हैं? आप अपने बच्चे से कि बेटा पानी दो, क्या चाहते हैं? फौरन जाए, अच्छे सलीके से ग्लास निकाले, पानी डाले, उसमें ट्रे लगाए, ला के बड़े अदब से सलीके से ला के आपको दे, और साथ मुअद्दब होके खड़ा हो जाए कि अम्मी साथ कुछ और ला दूँ, यही है ना। और अगर बच्चा पूछे क्यों, वाय, अगर ना लाऊं तो क्या गुना, फर्ज है, सुन्नत है, मकरूह तो नहीं, हराम तो नहीं, थप्पड़ मारेंगे आप उसके मुंह पे, चलो भाग जाओ। आप जरा अपने ऊपर और मेरे ऊपर लेके सोचिए, जब हमें अल्लाह का कोई हुक्म आता है तो हमारा रवैया कैसा होता है? सवालात वाला, अच्छा ये, अच्छा वो, ये वो, या चल पड़े? अगर इब्राहिम का तरीका अपनाना है तो ये है, और इब्राहिम को कोई बना बनाया माहौल नहीं बना था, ये आपके जहनों में उठने वाले सवाल का जवाब अभी दे दो। हम कहते हैं हाँ दिल तो बड़ा चाहता है जो सुने फौरन अमल करें, लेकिन वो मेरे शौहर भी तो भी साथ नहीं देते ना, और अभी मेरी अम्मा जी और सास जी का तो मिजाज भी ठीक नहीं, और वो मेरे तो अपने बच्चे ही इसके खिलाफ है, और मेरे तो दिस एंड दैट। तो याद रखिए कि इब्राहिम किसी आइडियल माहौल में नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जो अंधेरों से निकलकर रोशनी में आए। सूरह अल-अनाम में इनका सफर आप पढ़ेंगे। इनके चारों तरफ अंधेरे थे। इनका अपना बाप बुत बेचता था, बादशाह का प्रोहत था, दरबारी था बादशाह के पास, उसकी बहुत बड़ी आप कह ले वजीर था उस दौर का। इतने अंधेरों से लड़े, और जब लड़े तो अल्लाह ताला ने उस बात का सबूत क्या दिया कि वलकद इस्तफईना खुफ दुनिया। पता क्या चला कि अल्लाह की राह में की हुई कुर्बानियां कभी रायगा नहीं होती। इस तिजारत में कोई घाटा ही नहीं है, मत सोचा करें, सोच सोच के ना करा करें नेकियों के काम। इरादा हुआ चल पड़े, सुबह उठ के अपना हाल पूछेंगे ना तो आधे लोग बीमार होंगे। गर्म बिस्तर से निकल के बाहर निकलना ये बीमारी कर देता है बंदे को, अगर दुनिया का मामला हो। लेकिन दीन का मामला हो तो हजरत हुजैफा की तरह कि सर्दी वाली रात पे खंदक के मैदान में गए मुहासरा देखने, और कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ किसी ने कंबल दिया हुआ है। मत हाल पूछे अपना, नेकियों में चल पड़े। वो कहते हैं ना कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इस रास्ते में कभी भी बंदे का नुकसान नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस तरह चुना वाला कद इस्तफाई ना हो, उसमें ये पॉइंट वहां ही ऐड कर दे कि अल्लाह ने तो उनके कदमों के निशान तक चुन लिए। मकाम इब्राहिम, अल्लाह ऐसे चुनता है, अपने दोस्त के कदमों के निशान अल्लाह ने महफूज कर दिए कि जो कदम मेरे रास्ते में चलेंगे मैं उनको मिटने नहीं दूंगा। याद रखिए कि हमें भी ये सारे मुकाम मिलने के मौके मिलते हैं, लेकिन हम रुक चुके होते हैं। लेकिन बहुत तेज रोड हो, आप सोचिए हाईवे होती है ना, तेज ट्रैफिक होती है, कभी आपके पीछे वाला बहुत तेजी से आए ना तो आप क्या करते हैं, फौरन अपनी गाड़ी बचा के कहते तुम जाओ। जो तेज आते हैं ना उनके रास्ते से बैरियर्स उठा लिए जाते हैं, क्यों, कि इन्होंने रुकना कोई नहीं, रुकना कोई नहीं, तो अपनी जान बचाओ। मैं और आप इन नेकियों के सफर में अगर तेजी करेंगे ना तो हमारी मुखालफतें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसने नहीं रुकना, पीछे हो जाओ, मैं काफिर थोड़ी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं फलां थोड़ी हूँ, मैं भी ये करता हूँ करता हूँ। और अगर आप पूछ के प्लीज आप कहें तो, अगर आप अलाउ करें बिकॉज मैं सीख रही हूँ अच्छा अखलाक नाज हुस्ना, तो कोई बंदा आपको रास्ता नहीं देगा। ट्रैफिक में जाते हुए इस बात को आप 20 बार देख सकते हैं, जो गाड़ी लोगों से पूछे ना कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊँ, कोई जाने देता? जो बीप दे रहे होते हैं और जो सिग्नल देते हैं इधर से उधर उधर से उधर, वो क्यों, ताकि आप रास्ता ले। तो याद रखिए जिंदगी के इस सफर में भी हर वो चीज़ आपके रास्ते में जो आ रही है ना, रुकावट बन रही है, उसको आपको खुद हटाना पड़ेगा। वरना लोगों का तो मामला क्या है, वद्दू लौ तुदख़िनू फयुदख़िनून, वो तो चाहते हैं कि आप जरा ढीले पड़े तो हम इनको और ढीला करें। आज आप जाके जरा मशवरा करके देख लें घर वालों से कि एक पारा पूरा हो गया, देख ले मुझे अब आगे चलना चाहिए नहीं, तो वो कहेंगे सोच लो, अगर आपने ढीला ढाला अपना दिखाया होगा तो कभी भी वो आपको इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, तुम्हारे साथ ये मामला है खराबी का और है, तुम मोटी हो जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बात बता के कहते हैं कि इब्राहिम को हमने क्यों चुना, इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और ये सलामतियों वाली बातों की अमली मिसालें कौन सी थी, आप सबको फिंगर टिप्स पे याद है, बचपन से हम इतनी दफा सुन रहे हैं कि बचपन में इंसान को माँ बाप प्यारे होते हैं तो बचपन में वो चल पड़े किधर, जब बाप के साथ लड़ पड़े, बिरादरी खानदान का बड़ा रोब और डर होता है तो उस वक्त निकले तो किधर चल पड़े, हिजरत करके चल पड़े, जवानी में बीवी को छोड़ा बच्चे को छोड़ा, वो सारी कहानियां जो पीछे कई दफा से आपको सुनाते जा रहे हैं कि इस असलम तुले रब्बिल आलमीन के सबूत किस किस मौके पे दिया। बीबी हाजिर और इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से सहरा में छोड़ दिया, हम छोड़ते, हम तो अपने बच्चे का स्कूल नहीं बदलवाते, नहीं इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है चाहे ये इस्लामी स्कूल है, और इनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, और इनके मैनर्स अच्छे नहीं है, हम तो स्टैंडर्ड कॉन्शियस इतने हो जाते हैं। इस्माइल की गर्दन पे छुरी फेरने का ख्वाब था, हुक्म नहीं था कि करो, आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह सवाफात में कि ये नहीं कहा था कि इब्राहिम जाओ इस्माइल की गर्दन पे छुरी फेर दो, ये नहीं लिखा था, इशारा था जिससे ये बात समझ आ रही थी। और नबी को जो ख्वाब मिलते हैं वो भी इशारा था, वो भी हकीकत होती है, चल पड़े ख्वाब को हकीकत बनाने पे चल पड़े। इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जरा सा बच्चा आगे बढ़ता है, उसी बच्चे को साथ लेके बैतुल्ला की तामीर में बेटे को लगा दिया। वो जगह जहां कोई घर नहीं, सहरा डेजर्ट, वहां अल्लाह का घर बना दिया। इतना मुझे अच्छा लगता है कि जब ऊपर से नीचे देखें जहाज में से कहीं समंदर, और जब आप जाहिर है कि जब अरब कंट्रीज में जाते हैं तो मीलों की मील डेजर्ट है। तो मैं विंडो से देखते हुए यही सोच रही थी कि अल्लाह ऐसी ही जगहों में एक जगह तेरा घर बनाया था इब्राहिम ने, और आज वो देख कैसे भरा हुआ है। उसके पुल बनाते हैं, कभी कुछ एक्सटेंशन, इतने लोग हैं, चारों तरफ कुछ नहीं है। आप अगर जहाज से ऊपर देखें बैठे हुए तो हरम और मक्का के इर्द गिर्द आपको रौनक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, बेकार सूखा। अल्लाह बताता है इखलास के साथ काम करेगा कोई तो चारों तरफ अगर माहौल वाकई बंजर भी है ना, तो अल्लाह ताला आपसे खैर दिलवा देगा। असल बात ये कि आप करना क्या चाहते हैं। जिस वक्तों में लोग अपने घर बनाते हैं, इब्राहिम ने अल्लाह का घर बना दिया कि चलो आप बच्चों के लिए घर तो बना जाओ कम अज कम, चाहे फरमाबरदारी से बने या नाफरमानी से। ये नहीं कहा इस काल अलहो रब्बू असलिम काल असलम तुल। चेकलिस्ट है ये सबक, पूरे का पूरा रुकू आपको और मुझे अपने लिए क्वेश्चंस करके छोड़ना है, फिर आप देखेंगे फायदा होगा। और ये तरीका सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं था, वह वसा भी हा इब्राहिम बनी ही, यही बात, इसी की नसीहत तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भी की थी। ये है खूबसूरत नुक्ता। हम बहुत ज्यादा औलादों के बिगड़ने का और उनके पता नहीं क्या क्या हालात का शिकवा करते हैं, लेकिन आप फील कीजिएगा कि नबियों ने अपनी जिंदगी में वो बुनियादें उठानी शुरू कर दी थी जिन पे बाद में उनकी औलादों ने दीन खड़ा किया था। और वसीयत कहते ही कीमती चीज को है, बड़ी अहम, मरने के वक्त जो नसीहत होती है उसको वसीयत कहते हैं, क्योंकि उस वक्त बंदा इधर उधर की बातें नहीं करता, वही बात करता है जिसकी उसके दिल को चोट पड़ी हो। तो नबियों ने डेथ बेड पे क्या कहा, सिर्फ इब्राहिम ने नहीं, इब्राहिम बनी ही बल्कि व याकूबू, वसीयत की इसके साथ इब्राहिम ने और याकूब ने अपने बेटों को, ये मतलब है। क्या कहा आप जरा इस वसीयत पे गौर कीजिए, और खुद को डेथ बेड पे रखते हैं, मरना तो है ना। खुशकिस्मत है कि जिनको मौत से पहले आसार शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि मरने वाले हैं, कोई चलो अच्छा अपना हिसाब किताब सीधे कर ले। इसीलिए कहा कि अचानक मौत मोमिन के लिए तो रहमत है, लेकिन गुनाहगार और काफिर फाजिर के लिए एक पकड़ है। ना तौबा कर सका, ना लोगों के मामले हिसाब किताब सीधे कर सका, इसीलिए कहा गया कि हर वक्त मरने के लिए तैयार रहो। तो आप सोचिए डेथ बेड पे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं होती तो क्या कहती, साथ साथ मुहासबा, या बनीजा ए मेरे बेटो, इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीने इस्लाम को। हम यहां क्या कहते हैं, इसके हाथ पीले कर दूं, इसका उधर रिश्ता कर दूं, इसका खाला के घर कर देना, इसका मामू के कर देना, और वो फला जायदाद है वो उसके नाम पे लगा देना, वो उधर कर देना। बुढ़े बुढ़े मरते हैं ना, तो मरने के करीब उनके दिलो दिमाग पे अपनी जायदादें और अपनी जमीनें होती हैं। यकीन करें, ये घर उसके नाम लगाना, अच्छा ये करना, ये मेरे कड़े उसको दे देना, मेरी चूड़ियां उनको देना, क्योंकि हमें ये चीजें कीमती लगती हैं ना। नबियों को दीन कीमती लगता है, इसलिए उनको गम क्या था कि हमने अपनी जिंदगी में तो अल्लाह के दीन की हतुल मकदूर हिफाजत की, संभाल के रखा है, इसके अंदर पोल्यूशन नहीं होने दी, इसके अंदर गंदगी नहीं डालने दी, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे बाद ये दीन बिगड़ जाए, चोरी हो जाए। इसलिए कहा कि देखो बच्चों, इस दीन की हिफाजत करना नंबर एक, और नंबर दो, फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस ना मरना तुम मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। पहले तो देखिए कि इस स्टाइल से ये नहीं लग रहा कि मरना उनके अपने इख्तियार में है, राइट, स्टाइल यही ना, तुम ना मरना मगर मुसलमान होते हुए। और अगर लफ्ज देखे ना तमूतुन्न, तो नूने सकीला बोलते हैं इसको, शिद्दत है, तशदीद भी ऊपर शद भी है, जोरे बयान ताकीद, हरगिज हरगिज तुमको मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो। कैसे ये सब कैसे हो कि तुम वो काम करो जिस पे तुम मरना चाहते हो, ये मतलब है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मौत इस्लाम पे आए, तो हर वक्त मुस्लिम बने रहो ताकि जब भी जहां कभी मौत आए उस वक्त तुम अपने आप को मुसलमान पाओ, ऐसा ना हो कि अपने आप को गलत तरफ ले जाओ और पीछे ले जाओ। खैर उसके बाद क्या हुआ? कहा ठीक है, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, यह दीन अल्लाह का इंतखाब है, इसके बाद अब किसी और चीज़ को मुंतखब ना करना, इसके अलावा किसी और की तरफ रुख ना करना, ये अल्लाह का फजल है, इसकी बख्शिश है, इससे कम चीज़ों पे ना रहना, इस दीन का वही शौक रखना जो हमारे सामने था, नमाजें भी कायम करते रहना, ये अमानत है, इसको कबूल करते रहना। और साथ ही साथ कह दिया कि वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान ही मरना, मौत तुम्हें आए तो इस्लाम के हाल पे आए। और साथ ही अब देखिए आगे सवाल है, यहाँ थोड़ी सी पहले बात बता दूँ फिर समझ आ जाएगी आपको, कि नबियों ने तो मरते वक्त अपने बच्चों को किस बात की दावत दी? मुस्लिमून, बस इस लफ्ज़ मुस्लिमून को हाईलाइट करके एक साइड पे कर दें। और याद रखना चाहें तो इस आयत से इतनी बात समझ लें कि नबियों ने अपनी औलाद को जिंदगी में जिस चीज़ की दावत दी थी ना, मरते वक्त भी उसी की दी थी, और वो क्या है कि तुम मुसलमान मरना। सूरत यूसुफ अगर आप खोले 101 आयत में, तो हजरत यूसुफ ने अपने लिए भी यही दुआ की थी कि फातिर अस्समावाति वल अर्दी, ए आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, दुनिया और आखरत में तू ही मेरा कारसाज है, लिहाजा तवफ्फनी मुस्लिमन, मुझे मौत ना देना मगर इस्लाम की सूरत में, वल्हिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों के साथ रखना, मेरा दीन एक ही हो, मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ के फिरकाबंदी और इस तरह की चीज़ों में ना चले जाऊं। लेकिन बाद में यहूद ने क्या किया, एक इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये आयत नंबर 132 का थोड़ा सा सबबे नज़ूल नोट कर लीजिए, कि यहूद ये दावा करते थे कि बल्कि इल्ज़ाम लगाते थे अंबिया कराम पर, जैसे कि दूसरे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, वो क्या थी, कहते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मरते वक्त अपनी औलाद को ये नसीहत की थी कि तुम यहूदी हो के मरना। अब यहां थोड़ा सा दिलचस्प नुक्ता आप देखेंगे, इसलिए हम यहूदी हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अम कुंतुम शुहदा। अब आयत पे नजरें कीजिएगा, क्या तुम हाजिर थे? किसको कहा जा रहा है क्या तुम? तुमसे मुराद यहूदे मदीना। अच्छा तुम ये कहते हो कि वो कह के गए हैं कि मरना, तो क्या तुम हाजिर थे? इस हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत आई, यानी उनके डेथ पे, यानी ये जो इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि उन्होंने यहूदी बनने की और यहूदियत पे मरने की बात की थी, तो क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा था? तुम उस वक्त हाजिर थे? अब यहाँ देखिएगा कौम है, खामोशी है, यानी कि ऐसा हुआ ही नहीं, नहीं है। आम का जो लफ्ज़ है ना, या के मानों में आता है, यानी या जो बात तुम कह रहे हो वो सच है, या फिर दूसरी बात सच है। जब उनके ऊपर मौत के असबाब शुरू हो गए हुए थे, तो फिर मान जाओ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। अब यहाँ अगला हिस्सा जो है ना, ये असल वसीयत के अल्फाज है, इस कौल अली बनी ही, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, किसने कहा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मा ताबुदूना मिन बादी, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद? मा ताबुदून, देखिए एक होता है लफ्ज़ मन, आकिल के लिए आता है, और माँ गैर आकिल के लिए आता है। अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है ना, वो दो तरह के हैं। कुछ लोग हजरत ईसा की इबादत करते हैं, तो हजरत ईसा कौन है? मन, आकिल है ना। और कुछ लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, दरख्तों की, तो वो क्या है? माँ। गोया के माँ में और भी छोटी बात है कि ये बताओ किस किस की मेरे बाद इबादत करोगे, जिंदों की मुर्दों की, किसको पूजोगे? कालू, वो बोले, कौन बोले, आप भी बोलिए, हजरत याकूब के बेटे, कितने थे? 12। क्या बोले? नाबुदू, हम इबादत करेंगे इलाह का, तेरे इलाह की, व इलाह आबाई का, और तेरे बाप दादा की इलाह की। ये जो लफ्ज़ आबा है ना, अब से जमा है, तो उर्दू में हम कहते हैं बाप दादा, अबाओ अजदाद, लेकिन यहाँ से मुराद है बहुत सारे बाप। तो जैसे बाप होता है ना, तो दादा भी बाप ही होता है, पर दादा भी बाप है, बाप 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 का बाप, सब बाप है। तो आबा में मुराद क्या है कि आपके इंसेस्टर्स, आपके फोर फादर्स, इन सब की हम इबादत किसकी करेंगे? इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, इब्राहिम इस्माइल और इसहाक के रब की, यानी ये सारे इनके बाप दादा थे ना, उनका नाम ले दिया, और इन सब के कोई इला फर्क नहीं थे, बल्कि इलाहम वाहिदा, एक ही ला था उनका, वह नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके लिए मुसलमान रहेंगे। यहाँ रुकिए जरा। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगाई, अल्लाह की तौहीद, हक्कानियत, बच्चों की जितनी अच्छी तरबियत कर सकते थे कर दी। अब डेथ बेड है, मौत की सख्ती है, और बाप बच्चों से पूछता है कि बच्चों बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, और बच्चे कहते हैं इलाहम वाहिदा। कितना सुकून मिला होगा हजरत याकूब को, आपकी और मेरी जुबान में कितनी इत्मीनान की और चैन की मौत आई होगी, जिसको कहते हैं ना कि अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। सवाल पैदा होता है, क्या मुझे और आपको भी इस बात का यकीन है? हमारे बच्चे हमारे बाद मुसलमान ही रहेंगे, इस्लाम पे ही होंगे। अगर तो आपने जिंदगी में कोशिशें की हुई हैं और उनके अंदर जबरदस्ती वाला दीन नहीं, दिल को तोड़ने वाला दीन डाला हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। लेकिन अगर जबरदस्ती की नमाजें, बोझ पड़ती हुई नमाजें और बातें, क्या करें किस तरह से, और वैसे वाली बातें, तो आप बताइए कि डर है कि नहीं कि आज तो हम उठा के कहते हैं कि ये काम कर लो तो वो कर लेते हैं, और अगर हम नहीं कहते तो उनकी आंख ही नहीं खुलती। बात वाज़े, हर दिन अपने बच्चे को इस तरह से डील करें कि मैं कल हूं कि नहीं हूं, याद रखिए। हर नमाज पे जब अपने बच्चों को उठाते हैं तो सोचा करें, अगर अगली नमाज पे मैं ना हुई तो क्या ये खुद उठ जाएंगे? और मुझे एक बाप की बात नहीं भूलती, अपने बच्चों को जब उठाते थे ना फजर के लिए, और एक दो आवाजें लगाने के बाद जब बच्चे नहीं उठते ना, होते ही है ना, जवानी की नींद भी बड़ी भारी होती है, तो एक दिन कहने लगे कि बच्चों मुझे ऐसे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता, यानी किसी रात को मुझे हार्ट अटैक हो गया और मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम तो नहीं उठोगे। भाई तुम नमाज के लिए नहीं उठ रहे तो मैं भी तो चीखूंगा, तुम्हें क्या पता बाप बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हकीकत है कि ये बात दिल को पकड़ने वाली है। अपने जवान बच्चों के साथ दोस्तियां करें, उनके दिलों को सजाएं, छोड़े अब उनकी चीजों को जाती, जो भी मामले हैं ना, अल्लाह उनको खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा। गर्मी सर्दी, हम इससे कितना ज्यादा फिक्र करते हैं। भूखा जाए बच्चा सारा दिन, माँ को चैन नहीं पड़ता। जैकेट ना पहन जाए, माँ को चैन नहीं आता। लेकिन अगर सुबह की नमाज, शाम की नमाज, दुआएं और अस्कार नहीं है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि हमारे बाद क्या होगा? वट एम आई लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ रही हूँ? और आप देखिए कि आप में जो यंग बच्चियां इस वक्त, जिनके भी शादियां नहीं हुई और जिनके भी बच्चे नहीं हैं, आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं। अभी तो आपके पास वो रास्ते भी चुनने का चॉइस मौजूद है कि आप कैसा लाइफ पार्टनर पसंद करें अपने लिए। मैं कहती हूँ एक शौहर में कोई खूबी ना हो, एक टैडी पैसा, जिसको कहते हैं ना अपनी जुबान में टैडी पैसा, कमा के ना लाए घर में, बीवी को कोई फूल तक ना दे, लेकिन अगर वो उसको नमाज के लिए सुबह फजर पे उठा देता है ना, तो वो ब्लेस्ड है, वो आपके लिए एक खुशकिस्मती की अलामत है। हदीस में आता है कि तुम्हें तुम्हारे जईफ और कमजोर लोगों से रिस्क मिलता है। हो सकता है किसी का शौहर कमजोर ही हो, बीमार है, हैंडीकैप्ड होते हैं लोगों के, नहीं जॉब करते, जॉबलेस हैं, पेशेंट्स हैं, कहीं भी हैं, घरों में कई तरह की कहानियां मिसालें मौजूद होती हैं, लेकिन अगर उनकी वजह से घर का माहौल दीन पे है और वो आपको फजर पे सबको उठा देते हैं, तो आप उनकी जिंदगी की दुआ करें। ये ना कहें कि इनका कोई फायदा नहीं है। और अगर आप बच्चों के बाप सुन राजे के शौहर आपके नहीं, दादा, घर में एक दादा बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, हाथ नहीं तोड़ता, दादी या दादा, कोई भी, नाना नानी, बुजुर्ग कह लें घर का कोई, अगर फजर पे उसके उठने की वजह से घर उठ जाता है ना, तो आप उनकी जितनी खिदमत कर लें कर लें, क्योंकि ये चीजें फिर हमेशा नहीं रहती। पहले दौर से आप बचपन से देखता रहे, हमारे अपने लाशौर में, यकीन करें मुझे अच्छी तरह याद है कि छुट्टियां होती थी तो शौक होता है नानी के घर जाने का, लेकिन इस वजह से खौफ आता था कि घर में सुबह सुबह नाना वो नानी माने उठा देना, उन्होंने पर्दे हटाने, फजर के वक्त यूं लगता था घर में कोई तूफान आ गया, लाइटें खोल दो, बातें करो, उनके अपने उठने, बत्तियां जलाने, करने। और उस वक्त के बुजुर्ग बच्चों से इतना नहीं डरते थे कि कदम भी उठाएं कि इन गरीबों की आंख ना खुल जाए। आज हमारा हाल तो ये कि हम उठा भी रहे होते हैं तो उस वक्त भी उनकी चादर ठीक ही कर रहे होते हैं कि इनको ठंड ना लग जाए, और उस वक्त में लो। आज तो ये डिसेंसी की बात हो गई ना कि डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया, भाई ये रात को देर से सोया और इसने सुबह जल्दी स्कूल जाना है। हम तो अपने बच्चों से खौफ खाते हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरे से कोई पूछे ना तो सुबह फजर से पहले हमारे घरों में ऊंची आवाज से तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए, शोर करें। आप गर्मी है तो एसी बंद कर दें, सर्दी है तो हीट बंद कर दें, बदतमीजी से नहीं करें कि खींच के उनकी चादरें उतार दें, लेकिन शुरू से घर का वो माहौल बनाएं। और दुनिया की जब आसाइशें ज्यादा होती है तो हम सोचते हैं उसके साथ लाजिम मलजूम है कि हम अपने बच्चों की इन चीज़ों का ख्याल रखें। हालांकि एक घराना ऐसा है हमारे जानने वालों में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दोनों मियाँ बीवी अब चले गए, लेकिन हम छोटे होते से उनको देखते आ रहे हैं कि जो मिसल मशहूर थी हमारे घरों में कि सुबह 4 बजे तहज्जुद का जो वक्त है उनके घर का सबसे छोटा बच्चा भी उठाता है और अब मियाँ बीवी ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं, वही आदत, और आज वो बच्चे देख ले उनके उनके नाम रोशन कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 7 बजे तो एक बच्चा उठ जाए तो 5:30 बजे ना उठे या 6 बजे ना उठे। हाँ फजर जब होगी 7 बजे तो जरूर उठेंगे। देखिए हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन मुझे तो लगता है आजकल मेरे दिमाग पे सिर्फ उम्मत का लफ्ज़ सवार है। जिधर जिसको मैंने जिस मौके पे देखा है, जहाज में देखा है, सड़कों पे देखा है, ईदगाह में देखा है, मैं उसको ये कहती हूँ अल्लाह तेरे नबी का ये कैसा उम्मती है। मैं उसको अपनी नज़र से नहीं देख रही होती या उसके साथ कौन है, उसके घर वाले के हैं, मैं ये सोच रही होती हूँ कि ये इस वक्त नबी का उम्मती कैसे है। तो मैं और आप अपने बच्चों के लिए अगर एक लफ्ज़ अपने लिए डाल दें कि मेरा तो ये बच्चा है नबी का उम्मती है, चलो मेरा तो ये जैसा भी बच्चा है, लेकिन ये बताओ कि ये नबी का कैसा उम्मती है। हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ जोड़ते हैं, वल्लाही हम अल्लाह के दीन को वैसे नहीं सोचते जैसे अपने बच्चों को सोचते हैं। जिस चीज़ की उनको ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं होनी ना अगले 10 साल बाद भी, हम उनके लिए वो भी जोड़ते हैं। बाद दफ़ा बच्चियों को वो चीज़ें शादियाँ और जहेज के नाम पे देते हैं जिन्होंने कभी खोलनी नहीं, कभी पहननी नहीं, वो जेवरात जो कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाना सिवाय शादी के 1-2 दिन जो कि पहना दें, लेकिन हम कहते हैं बच्चे 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 बच्चे, लेकिन असल चीज़ क्या है? वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। क्या ये दुखने वाला नुक्ता है कि नहीं? इब्राहिम कौन थे? अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वफाओं का हक अदा करके आजमाइशों में पूरे उतरे, लेकिन असल उनकी खूबी यहाँ समझ आ रही है कि उन्होंने नस्लें तैयार की। आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत नेक लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन नस्लें नहीं तैयार कर पा रहे, अकेले छुप छुप के तहज्जुदे पढ़ते हैं, सारा सारा दिन बुढ़े बाप मस्जिदों में जाते रहेंगे, सफाइयाँ करेंगे, उनका जो काम करेंगे, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि जवान बच्चे को कम से कम दिन में 5 वक्त उस नमाज पे फर्ज कर दें। मैं कहती हूँ ये माँ बाप की कमियाँ होती हैं, कच्ची शाख मुड़ जाती है। आप माँ की कमजोरी है कि आपका बच्चा 5 वक्त नमाज ना पढ़े 10 साल का होने के बाद, और फिर आप उसको गर्म और सर्द रोटियां बना के और खाने खिलाएं, ये मेरी और आपकी कमी है। अगर सिर्फ माँ और बाप स्टैंड ले लेना, ये नस्लें जो है ना बदल जाती हैं। उनको पता है अभी जो भी कह रहे गालियां देंगे, बाद में इन्होंने हमें लाड करके मुंह में नवाले डाल रहे हो ना। हम सोचे अपने ऊपर लेके सोचे, और इस सदी में जिस दौर से मैं और आप इस वक्त गुजर रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल सदी है। मेरे और आपके बच्चे और हमारे बच्चों की नस्लें, इनके आगे बड़े बड़े अजदहे मुंह खोले हुए हैं फिरौन वाले, निगल रहे हैं पूरे पूरे स्वॉलोइंग स्वॉलो कर रहे हैं, और हम कभी कमजोर बच्चे छोड़ के इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन करने का ख्वाब नहीं देख सकते। आज घर बैठ के ना सोचें, जब फारिग हो ना तो सर पे रख के सोचें कि वाकई मुझे गम क्या है। बेटे को जॉब नहीं मिली भी इसका ज्यादा गम है, या उसके 5 वक्त का खुद से उठ के नमाज पढ़ना ना और दीन का शऊर ना होना। बेटी के रिश्ते और उसकी शादी की फिक्र है कि इसकी उम्र बढ़ गई और उम्र बढ़ती जा रही है, इसका गम ज्यादा है। मेरी शादी नहीं हो रही ये गम ज्यादा है, या अल्लाह का दीन नहीं फैल रहा, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक भेड़ चाल है, भेड़ चाल है। ये असल में यहाँ ये मिसालें दे के अल्लाह अगला सबक जो कल अल्लाह ने जिंदगी दी तो करेंगे, ये मनसब की तब्दीली की तैयारियां हो रही हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक कौम से एक हुकूमत से इख्तियार छीन के अब दूसरे के सर पे ताज रखा जा रहा है कि उम्मत मुस्लिमा तुम्हें बहुत कुछ मिला है। ये जो आज हम मुसलमानों को चोटें पड़ रही हैं ना, ये भी हमारी नस्ल ही तैयार हो रही है, क्योंकि जब इब्तला से लोग गुजरते हैं ना, हम तकलीफों से गुजरते हैं तो फिर खैर आती है। चारों तरफ आज इस्लाम के साथ जो मामला है, ये हमारे बच्चों के अंदर सोया हुआ ईमान जगवा रहा है। वो भी आज सोचने में पड़ेंगे कि हमारा क्या कसूर है, क्यों हमें गाली देते हो, हमें क्यों बुरा कहते हो। तो इसके लिए इंसान फिक्र करे, अपनी फिक्र करे, और कुर्बानी की कीमत पे किसी मकसद को इख्तियार करने वाला, यही अल्लाह के यहाँ के मुकाम पाता है। खुले खुले आम हालात हैं, मुझे आपको दीन का काम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, नो प्रॉब्लम। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा मुकाम, याद रखें। कुर्बानियां करते जाएं और पीछे मुड़ के भी ना देखें, आपको पीछे से कामयाबियां पुकारेंगी। लेकिन आसानियों से, नरमियों से बातें करना, ये बच्चों की तरबियत कोई छोटा मसला है? मैं तो अक्सर सोचती हूँ, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने इस जिम्मेदारी से आजाद रखा है। अभी यकीन करें, अल्लाह दे 100 दफा, ना दे 100 दफा, लेकिन इतनी बड़ी जवाबदेही है। नींद कैसे आती है? मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि जिनके बच्चे जवान हैं या जवान होते हुए बच्चे हैं, उनको रातों को नींद कैसे आती है? बाहर एक मेन होल खुला होता है ना, तो माँ को फिक्र लग जाती है कि अंधेरे में बच्चे का पाँव ना उसमें पड़ जाए। यहाँ तो चारों तरफ फितनों के दरवाजे खुले हुए हैं, फिर हम कभी स्टेटस के नाम पे, कभी मजबूरियों के नाम पे कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं।